हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। सीक्रेट एजेंसी ऑफिस में मीटिंग अटेंड करने के बाद अमन सीधा आर्टिस्टिक के ऑफिस आया। लावण्या उसके पीछे अपनी गाड़ी में थी। अमन बहुत गुस्से में था और आते ही सीधे अपने केबिन में चला गया। उसे मनाने के लिए लावण्या उसके पीछे पीछे गई। केबिन के अंदर आते ही उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। एक बार मेरी बात तो सुनो, मैंने ये नहीं किया है, लावण्या ने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की, पर अमन ने उसे कुछ कहने का मौका नहीं दिया। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें कुछ भी कहूँ, प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, अमन ने अपने गुस्से को काबू करके शांति से जवाब दिया। लावण्या की आंखें नम थीं। एक बार मुझे कहने का चांस तो दो, मुझे समझाने तो दो कि ये सब कैसे हुआ। लिसन मिस बजाज, मैं फ़िलहाल कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हूँ। तुम शुक्र मनाओ कि मुझे दूसरों को हर्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, तो मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ भी ऐसा वैसा बोलूँ। फॉर गॉड सेक, फ़िलहाल के लिए यहाँ से चली जाओ, अमन लगभग चिल्लाते हुए बोला। लावण्या अच्छे से जानती थी अमन गुस्से में किसी से कोई बात नहीं करता था। उसने आगे कुछ भी कहना सही नहीं समझा और वहाँ से बाहर चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे। बाहर आते ही उसने सबसे पहले दिव्याना को कॉल किया। वो अभी तक विधिक के साथ हॉस्पिटल में थी। मैं तुम्हारे कॉल का ही वेट कर रही थी, ज्यादा बड़ा धमाका तो नहीं हुआ ना, दिव्याना ने मुस्कुराकर पूछा। तुम इतनी घटिया कैसे हो सकती हो? ऐसा तो कोई अपने सौतेले भाई बहन के साथ भी नहीं करता जो तुमने मेरे साथ किया है। तुम कुछ भी कर लो, पर अमन तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला। अच्छा, तो अब तुम्हें सगा और सौतेला याद आ गया? उस लड़के के साथ सगाई करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बड़ी बहन उससे प्यार करती है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने ये सब अपनी ड्यूटी निभाने के लिए किया है। मुझे तुम लोगों की पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, दिव्याना गुस्से में जवाब दिया। यहाँ जो भी हुआ वो मैं देख लूंगी। इससे एक सबक तो जरूर मिला है, जिंदगी में कुछ भी हो जाए पर तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगी, कहकर लावण्या ने कॉल कट कर दिया। वो अपने केबिन में थी और अमन के गुस्से को शांत होने का इंतजार कर रही थी। सुबह से रात हो गई थी और काम करने के बाद सारा स्टाफ अपने घर को जाने लगा। फिर भी अमन अपने केबिन से बाहर नहीं निकला था और ना ही उसने लावण्या को बुलाया था। अमन अपनी चेयर पर बैठा था और उसे अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं कैसे तुम्हारा सामना करूंगा? मैं तुम्हें उस विधिक राणा के सामने ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैंने खुद से वादा किया था मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, और अब मुझे, काश ये दिन कभी नहीं आता। अमन खुद को काफी लाचार महसूस कर रहा था। उसका इंतजार करते हुए काफी टाइम हो गया था, इसलिए लावण्या हिम्मत करके वापस उसके केबिन में आई। मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। नहीं, तुम नहीं समझ सकती हो, अमन उस पर चिल्लाकर बोला। मुझे नहीं पता तुमने वो सब क्यों किया, पर तुम अच्छे से जानती हो वो लड़की इनोसेंट है। अगर विधिक राणा ने उसे देखा तो तुम्हें क्या लगता है वो उसे अपने साथ नहीं लेकर जाएगा? हम उसे बचा लेंगे, बस हमें पूरा कन्फर्म करने की जरूरत है। अब तक ये काम हो चुका होता अगर तुम उस लड़की को सबकी नज़रों से बचाकर फेयर में से हॉस्पिटल नहीं लेकर जाते। हाँ, इसमें भी मेरी ही गलती है। यू नो वॉट लावण्या, मेरी सबसे बड़ी गलती क्या है, चलो मैं ही बता देता हूँ। मैंने तुम्हें दिव्याना से अलग समझा, ये है मेरी सबसे बड़ी गलती। मुझे नहीं पता था अपनी जलन में आकर तुम इस हद तक गिर जाओगी कि मिस्टर दत्त को सब बता दोगी, अमन उसके पास आते हुए बोला। अमन की बातों ने लावण्या को भी गुस्सा दिला दिया। वो जवाब में चिल्लाकर बोली, मुझे उस लड़की से कोई जलन नहीं है, मैं उससे लाख गुना बेटर हूँ। मैंने ये नहीं किया है, ये सब देवी ने किया है। अच्छा, तो दिव्याना को खुद से पता चल गया कि आंशी ही विधिक के बटरफ्लाई हैं। मैंने उससे अपने दिल की बात शेयर की थी, मुझे नहीं पता था वो ये सब कर देंगी। यकीन करो, मैं सब सही कर दूंगी, बस तुम मुझे एक मौका तो दो, लावण्या उसे समझाते हुए उसके पास आई। तुम्हारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है, अमन ने सख्ती से कहा। जाकर पूरी टीम को इन्फॉर्म करो कि रात को 2 बजे होटल में मीटिंग के लिए तैयार रहें। याद रखना, अगर आंशी विधिक के पास पहुंची तो। अमन की बात खत्म होने से पहले लावण्या बीच में बोली, हाँ जानती हूँ, हमारा रिश्ता टूट जाएगा। अमन ने उसे आगे कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया। उसके कहे मुताबिक लावण्या ने पूरी टीम को इन्फॉर्म कर दिया था। लगभग रात के 2 बजे दिव्याना के अलावा अमन की पूरी टीम होटल में मौजूद थी। मीटिंग से पहले ही लावण्या ने जस को इस मामले में कोई रास्ता निकालने के बारे में कह दिया था। सबके आने के बाद जस ने अपना लैपटॉप खोला। मेरी दिव्याना मैम से बात हुई थी, उन्होंने मुझे विधिक के कल के शेड्यूल के बारे में बता दिया। बाकी हमें जिस पर भी शक है हम उनके कल के शेड्यूल के बारे में भी पता लगाने में कामयाब हो गए हैं। रॉबिन और मेलिसा, तो कल कौन क्या करने वाला है? ओके, चंडीगढ़ और लुधियाना के बीच आने वाले मेन हाईवे की तरफ विधिक ने एक होटल बनाया है। ये बिल्कुल आपके होटल की तरह है जहाँ सिर्फ मीटिंग होती है और नाम का होटल है। वहाँ उनकी एक मीटिंग होने वाली है। होटल के आसपास थोड़ी बहुत बस्ती है ताकि लोगों को शक ना हो। वो लोग मीटिंग के लिए वहाँ मिलने वाले हैं। जस ने जो भी इन्फॉर्मेशन निकाली थी वो उन लोगों को बता दी। लैपटॉप पर विधिक के होटल की तस्वीर थी। फिर तो हमें उस लड़की को उस होटल तक पहुँचाना है, फिर बाकी का काम बहुत आसान रहेगा। लेकिन हम उसे वहाँ तक लेकर कैसे जाएंगे? मिस्टर गुप्ता बोले, इसका भी एक रास्ता है। कुछ दिन पहले आर्टिस्टिक में इसी होटल के इंटीरियर के लिए कॉल आया था। मैं आंशी के साथ वहाँ जा सकता हूँ और मुझे वहाँ कोई रोकेगा भी नहीं। उसने जॉब छोड़ दी है, ऐसे में उसे वहाँ तक लाने का रास्ता सोचना पड़ेगा। अमन ने जवाब दिया, वो मैं देख लूँगी। तुम सब 11 बजे बेकअप टीम के साथ होटल पहुँच जाना। आंशी को वापस ऑफिस लाना मेरा काम है। लावण्या ने बाकी की जिम्मेदारी खुद पर ली। कल का सारा प्लान बनाने के बाद वो लोग थोड़ी आश्वस्त थे, साथ ही उनके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। वो आंशी को लेकर परेशान हो रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आता दत्त सर तक ये रिपोर्ट पहुंचाई किसने होगी। हमारी मीटिंग काफी कॉन्फिडेंशियल होती है और उसमें दिव्याना भी नहीं होती, फिर ये किसका काम हो सकता है? मिस्टर गुप्ता ने कहा। वो अभी तक हैरान थे कि मिस्टर दत्त को इस बारे में कैसे पता चला होगा। उनकी बात का जवाब देते हुए जस ने कहा, इसमें इतना सोचना क्या है, ये उसी चुड़ैल का काम है। वो एक्चुअली मैंने ही बातों बातों में दीवी को बता दिया था, सब मेरी गलती है, बट ट्रस्ट मी, मैं सब ठीक कर दूंगी, लावण्या ने कहा। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वो तो वक्त ही बताएगा कि कितना क्या सही होता है, अमन ने बुझी आवाज में कहा। मुझे तो आंशी के लिए बुरा लग रहा है। मैंने महसूस किया कि वो बहुत इनोसेंट है। मैं पिछली बार उससे मिला था तब लगता ही नहीं कि वो विधिक राणा की गर्लफ्रेंड हो सकती है। कहीं हम कोई धोखा तो नहीं खा रहे? जस ने हैरानी से पूछा। नहीं, हम कोई धोखा नहीं खा रहे। वो इनोसेंट हो सकती है, पर विधिक राणा की गर्लफ्रेंड वही है। शायद इसी इनोसेंस ने उसका दिल जीत लिया हो। लावण्या चुपचाप उन सब की बातों को सुन रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार आंशी का चेहरा आ रहा था जब वो सब छोड़कर आगे बढ़ने का सोच रही थी। मुझे माफ कर देना आंशी, मेरी वजह से तुम्हें एक बार फिर उस हैवान के सामने जाना पड़ेगा। यकीन रखना, मेरी जान भी चली जाएगी तो भी मैं तुम्हें उसके पास नहीं जाने दूंगा।
उनकी मीटिंग खत्म हो चुकी थी, साथ ही उन्होंने आगे की पूरी प्लानिंग भी बना ली थी। वहां से निकलने से पहले मिस्टर गुप्ता ने कहा, हमें इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि हमारी आइडेंटिटी रिवील ना हो। अगर ऐसा हुआ तो ना केवल हम इस मिशन से बल्कि अपनी जॉब से भी हाथ धो बैठेंगे, और मेरा यकीन मानो, एक सीक्रेट एजेंट के लिए इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। मीटिंग के बाद सब अपने अपने घर को जा चुके थे। अगला दिन उन सब के लिए काफी संघर्षपूर्ण रहने वाला था। अगली सुबह अपने प्लान पर काम करने के लिए अमन और लावण्या ऑफिस में थे। जस अपना वेश बदलकर होटल की रेकी कर रहा था, तो वहीं मिस्टर गुप्ता ने बैकअप टीम को वहां लाने का काम संभाला था। अमन और लावण्या अमन के केबिन में थे, जहां लावण्या ने आंशी को वापस ऑफिस बुलाने का वादा किया था। मैं उससे बात करती हूँ, मेरे बात करने के बाद शायद वो वापस ऑफिस आ जाए, लावण्या ने अमन से कहा। जवाब में उसने हाँ में सिर हिला दिया। लावण्या ने आंशी को कॉल किया। उसका कॉल कनेक्ट होने से पहले ही बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। उसने गुस्से में अपना फोन टेबल पर रखते हुए कहा, डिस्कस्टिंग, उसने मुझे ब्लॉक कर रखा है। इतनी मुश्किल स्थिति में भी अमन के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। उसने अपना फोन लावण्या को देते हुए कहा, इससे ट्राई कर लो। लावण्या ने उसके बात पर हामी भरी और आंशी को कॉल किया। कॉल कनेक्ट हो रहा था तो उसने फोन स्पीकर पर कर दिया। ऑफिस जाने की टेंशन ना होने की वजह से आंशी लेट तक सो रही थी। उसने नींद में ही फोन उठाकर कहा, कौन बोल रहा है? सुबह सुबह इस तरह किसी को नींद से जगाने पर पाप लगता है। उसकी आवाज अमन के दिल को सुकून दे रही थी। लावण्या ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मैं आर्टिस्टिक से लावण्या बोल रही हूँ, लगता है रॉन्ग नंबर लग गया होगा, मैंने वो जगह छोड़ दी है। आंशी ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन कुछ पेपर वर्क बाकी है। जॉब छोड़ने से पहले तुम्हें अपना पेंडिंग काम कंप्लीट करना होगा, और हाँ, तुम्हें उसकी सैलरी मिल जाएगी। लावण्या की बात सुनकर आंशी ने कहा, मेरा कोई पेंडिंग काम नहीं है, अपने बॉस से पूछो, उसके हिसाब से तो मैं कोई काम ही नहीं करती थी और फ्री में सैलरी लेकर चली जाती थी। तो ऐसा करो, जो काम बचा हुआ है वो उसी से करवा लो। आंशी जिस तरह से बात कर रही थी उससे लावण्या को गुस्सा आ रहा था, पर वो अमन के सामने कुछ जाहिर भी नहीं कर पा रही थी। उसने अपने गुस्से को काबू में करके शांत लहजे में कहा, देखिए मिस जिंदल, यहाँ लिस्ट में आपका नाम है और बाकी की टीम अनफॉर्चुनेटली छुट्टी पर है। आप आज के लिए आ जाइए, ज्यादा देर का काम नहीं होगा। आपको बस अमन के साथ यही कुछ दूर एक होटल में जाना है। वहाँ का इंटीरियर आर्टिस्टिक के थ्रू हो रहा है। आपको मीटिंग में प्रेजेंट रहना है और आपका कोई काम नहीं है। अमन के साथ जाने की बात सुनकर आंशी जल्दी से खड़ी हुई। ठीक है, मैं एक घंटे में पहुँचती हूँ, उसने तुरंत हाँ कह दी। आंशी जाने से पहले अमन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसलिए उसने इस काम के लिए मना नहीं किया। जबकि उधर उसकी हाँ सुनकर घबराहट से अमन के दिल की धड़कनें बढ़ गई। वो मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि आंशी मना कर दे, लेकिन उसके हाँ कहते ही लावण्या ने कहा, मैंने अपना काम कर दिया है। थोड़ी देर बाद एजेंसी से एडवांस कैमरास और माइक्रोफोन्स यहाँ पहुँच जाएंगे। तुम लोग उनकी मीटिंग को क्रैश करोगे। आंशी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। आई नो तुम सब संभाल लोगे, पर इस बार हमारे पास नाकाम होने का ऑप्शन नहीं है। अमन ने लावण्या की बात पर हामी भरी और इस मिशन पर जाने के लिए खुद को तन और मन से तैयार करने लगा। तो वो पल लगभग आ ही गया जब विधिक और आंशी आमने सामने आने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या होगा?